परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल के पुराना नियम में पाए जाने वाली पुस्तक पहला राजा का बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको इससे आत्मिक लाभ मिल रहा होगा। परमेश्वर की आशीषों को इन अध्ययनों से पाते जाइए और बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम सत्य वचन में।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका फिर से एक बार आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आज हमारे कुछ नए मित्र इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस समय पहले राजाओं की पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ किया है और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे दाऊद संसार की रीति पर कूच करने वाला था, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करने वाला था, परंतु उसने आधिकारिक रूप से किसी ऐसे पुत्र को राजा नहीं बनाया था। उसका एक पुत्र अदोनियाह स्वयं ही राजगद्दी पर अधिकार प्रकट करने का प्रयास करने लगा और संभवतः दाऊद को आपत्ति भी प्रतीत नहीं होती, परंतु नातान और बतशेबा ने दाऊद को उसका वचन स्मरण कराया कि राजा सुलेमान को ही बनाना होगा। तब दाऊद ने उसका राज्याभिषेक करवाया, जबकि सुलेमान उसकी दृष्टि में राजा होने योग्य नहीं था। मित्रों, यही कारण है कि दाऊद ने सुलेमान से कहा, तू हिया बांधकर पुरुषार्थ दिखा, और वह उसे निर्देश देता है। आज हम उससे आगे अपने अध्ययन को बढ़ाएंगे। पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 3 से 4 पद को पढ़ें। लिखा हुआ है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था कि यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इसराइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। मेरे प्रियो, दाऊद सुलेमान से कहता है कि वह परमेश्वर और परमेश्वर के वचन को थामे रहे। इस युवक को दिया गया दाऊद का यह सुझाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, दाऊद द्वारा सुलेमान को दी गई विरासत के बारे में बहुत ध्यान दिया जाता है, परंतु मेरा मानना यह है कि दाऊद ने सुलेमान के लिए जो छोड़ा उसके द्वारा वह संसार का कभी नहीं होने वाला सर्वोत्तम राजा बनने में सफल हुआ। ईसन अपनी पुस्तक न्यू बाइबल सर्वे में सुलेमान को दी गई दाऊद की विरासत का लेख देता है। पहला हम देखेंगे, उसने शाऊल के परिवार से राष्ट्र की अगुवाई लेकर बिन्यामीन के गोत्र से यहूदा के गोत्र को स्थानांतरित कर दिया और दाऊद के राजसी परिवार को सुदृढ़ किया। जब हम नए नियम का अध्ययन करेंगे तब इसका महत्व हमें स्पष्ट किया जाएगा। मती रचित सुसमाचार का आरंभिक वाक्य है मती 1:1 में, अब्राहम की संतान दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। तब लुका रचित सुसमाचार 1:31-32 में, स्वर्गदूत जिब्राइल ने मरियम से कहा, देख तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। केवल दाऊद के उत्तराधिकारी को ही सिंहासन पर बैठना है। और दूसरी बात है, उसने यरूशलेम को एक पवित्र नगर, एक धार्मिक केंद्र और सब यहूदियों की राष्ट्रीय राजधानी बनाकर स्थिर किया। यह आज तक भी ऐसा ही है। जब इसराइल ने 1967 की 7 दिवसीय युद्ध में यरूशलेम को अरबों से जीता था, तब उन्होंने घोषणा कर दी थी कि उसे लौटाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वह दाऊद की धरोहर है। यरूशलेम दाऊद का मनभावन नगर था और उसने उसको इसराइल की राजधानी बनाया था। सुलेमान ने उस नगर को सौंदर्यकरण किया और उसमें मंदिर बनवाया तथा उसे धार्मिक केंद्र का सम्मान प्रदान किया। मित्रों, हम यह न भूलें कि मंदिर निर्माण की संपूर्ण व्यवस्था वास्तव में दाऊद ने ही कर दी थी। और तीसरी बात हमें मिलती है, उसने संपूर्ण मूर्ति पूजा का व्यवहारिक रूप से निराकरण किया और यहोवा की आराधना को संपूर्ण देश में स्थापित किया। यह उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान था। तब हम चौथी बात देखते हैं, उसने अनेक राष्ट्रों को जीता जो इसराइल को उसके राजा को कर देते थे। उसने राष्ट्र की सीमा को दक्षिण में मिस्र तक और उत्तर एवं पूर्व में परात नदी तक। वास्तव में दाऊद ही था जिसने इसराइल की सीमा को पूर्व से कहीं अधिक आगे बढ़ाया था। सुलेमान के राज्य में शांति व्याप्त होने का मुख्य कारण यही था कि दाऊद ने इसराइल के सब वैरियों पर दमन कर दिया था। पांचवी बात, पूर्व देश का राजा जिसका हरम काफी बड़ा था परंतु वह केवल राजनीति के परिप्रेक्ष्य में था और धार्मिक एवं नैतिक भ्रष्टाचार से मुक्त था। रानियों का हरम रखना उस युग की प्रथा थी परंतु परमेश्वर ने उसका अनुमोदन नहीं किया। मुख्यतः इन रानियों के कारण ही दाऊद सदैव समस्या में रहा था। इन रानियों से उत्पन्न दाऊद के अनेक पुत्र थे जो राजमहल में उपद्रव करते रहते थे। उनके कारण दाऊद को आजीवन दुख और मनोव्यथा भोगना पड़ा था। परंतु परदेशी पत्नियों के प्रभाव में आने वाला सुलेमान था, दाऊद नहीं। यह सच है कि दाऊद ने बतशेबा के साथ महापाप किया था परंतु वह बतशेबा से विवाह करने से पूर्व की दुर्घटना थी। उसके पश्चात तो बुराई नाम मात्र की भी नहीं थी। छठवीं बात, दाऊद एक कवि और संगीतकार था जिसे लोग सप्रेम इसराइल का मधुर भजनकार स्वीकार करते थे। उसने हमारे लिए भी लगभग 73 भजन लिखे हैं। सातवीं बात है, दाऊद ने ही मंदिर की योजना तैयार की थी और उसका उद्देश्य था कि राष्ट्र में धर्म प्रायणता बढ़े और यहोवा की उपासना को बढ़ावा मिले। यद्यपि परमेश्वर ने उसे मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी। और अब आठवीं बात, यद्यपि उत्तर में वास करने वाले 10 गोत्रों और दक्षिण के 2 गोत्रों यहूदा और बिन्यामीन में परस्पर मेल नहीं था, शाऊल और उसके पुत्र की मृत्यु से ही यह मानसिकता उभर आई थी। इन गोत्रों को एक करने में और अपने शासनधीन यरूशलेम के राष्ट्रीय राजधानी बनाने में दाऊद को गंभीर कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था। और नवी बात है, दाऊद की मृत्यु के समय इसराइल शक्ति और सैन्य बल में किसी से पीछे नहीं था और प्रजा में शांति और स्वतंत्रता व्याप्त थी। प्रत्येक मनुष्य अपनी ही दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे बैठता था। सुलेमान ने अपने राज्य में जिस शांति का आनंद लिया वह वास्तव में दाऊद ने अपने राज्य में स्थापित की थी। मित्रों, हम अब आगे देखते हैं, पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, फिर सुन, तेरे पास बिन्यामिनी गेरा का पुत्र बहुरी में शिमी रहता है। जिस दिन मैं महनेम को जाता था उस दिन उसने मुझे कड़ाई से शाप दिया था, पर जब वह मेरी भेंट के लिए यर्दन को आया तब मैंने उससे यहोवा की शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से न मार डालूंगा, परंतु अब तू इसे निर्दोष न ठहराना। तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए और उसके पक्के बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। मेरे मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि दाऊद बदले की आत्मा का पद दर्शन करता प्रतीत हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा था नहीं। यद्यपि शिमी ने सिद्ध कर दिया था कि वह राजद्रोही है, वह अब भी जीवित था क्योंकि दाऊद ने उसे हानि न पहुंचाने की शपथ खाई थी। दाऊद अपने वचन का पक्का था, परंतु यहाँ वह सुलेमान से कहता है कि वह शिमी पर दृष्टि रखे और यदि वह निर्दयता का प्रदर्शन करे तो उसी के अनुकूल उससे व्यवहार करना। और वह समय आया जब सुलेमान ने उसे दंड दिया, परंतु जब तक उसने आवाज्ञा की और अपने राजद्रोह का खुल्लम खुला प्रदर्शन नहीं किया उसने कुछ हानि नहीं पहुंचाई। आइए हम देखें दाऊद की मृत्यु। पहला राजा की पुस्तक 2 अध्याय उसके 10 से 12 पद में लिखा है, तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। दाऊद ने इसराइल पर 40 वर्ष राज किया, 7 वर्ष तो उसने हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज किया था। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत दृढ़ हुआ। मेरे मित्रों, दाऊद की मृत्यु में दुख का वातावरण छा गया था क्योंकि वह परमेश्वर का एक महान भक्त था। क्या आपको दाऊद और बतशेबा के प्रथम पुत्र के विषय स्मरण आता है? वह कुछ ही दिन का था कि मर गया। दाऊद ने उसके बारे में कहा था, वह तो मेरे पास कभी नहीं आएगा, परंतु मैं उसके पास अवश्य जाऊंगा। अब दाऊद उस बालक के पास चला गया। पिता की मृत्यु के बाद सुलेमान सिंहासन पर बैठा। किसी राजवंश के बदलने पर या किसी शासक के बदलने पर परिवर्तन और महान अव्यवस्था का समय आता है। आइए हम देखते हैं सुलेमान का सिंहासन रोहन। पहला राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, और हगीत का पुत्र अदोनिय्याह सुलेमान की माता बतशेबा के पास आया और बतशेबा ने पूछा, क्या तुम मित्र भाव से आता है? उसने उत्तर दिया, हाँ मित्र भाव से। फिर वह कहने लगा, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। उसने कहा, कह। ध्यान दीजिए, यद्यपि सुलेमान राज सिंहासन पर है, अदोनिय्याह के मन से राजा बनने की लालसा समाप्त नहीं हुई है। वह इसी विचार को मन में संजोए हुए बतशेबा के पास आता है। बतशेबा को उस पर भरोसा नहीं था, अतः वह उसके उद्देश्य के बारे में जानना चाहती है। उसने उससे कहा कि वह शांति से आता है। उसने कहा, कह, अर्थात मैं सुन रही हूँ। पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, तुझे तो मालूम है कि राज्य मेरा हो गया था और समस्त इसराइली मेरी ओर मुंह किए हुए थे कि मैं राज्य करूं, परंतु अब राज्य पलटकर मेरे भाई का हो गया है, क्योंकि वह यहोवा की ओर से उसको मिला है। मेरे मित्रों, उसने कहा कि वह सुलेमान से अधिक जनमान्य है और प्रजा उसी को राजा बनाना चाहती है। तब हम आगे पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, इसलिए अब मैं तुझसे एक बात मांगता हूं, मुझसे ना ही ना करना। उसने कहा, कहे जा। उसने कहा, राजा सुलेमान तुझसे नहीं ना करेगा, इसलिए उससे कह कि वह मुझे शूनेमिन अभिषेक को ब्याह दे। मेरे मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए, अब क्योंकि राज्य मेरे हाथ से ले लिया गया है, मेरा एक ही निवेदन है, और उसने कहा कि मुझे शूनेमिन अभिषेक को ब्याह दे। आपको स्मरण होगा कि यह वही अभिषेक है जो अंतिम दिनों में राजा दाऊद की सेवा करती थी। पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 18 से 21 पद में हम आगे पढ़ते हैं, बतशेबा ने कहा, अच्छा मैं तेरे लिए राजा से कहूंगी। तब बतशेबा अदोनिय्याह के लिए राजा सुलेमान से बातचीत करने को उसके पास गई और राजा उसकी भेंट के लिए उठा और उसे दंडवत करके अपने सिंहासन पर बैठ गया। फिर राजा ने अपने माता के लिए एक सिंहासन रख दिया और वह उसकी दाहिनी ओर बैठ गई। तब वह कहने लगी, मैं तुझसे एक छोटा सा वरदान मांगती हूँ, इसलिए मुझसे ना ही न करना। राजा ने कहा, हे माता मांग, मैं तुझसे ना ही न करूंगा। उसने कहा, वह शूनेमिन अभिषेक तेरे भाई अदोनिय्याह को ब्याह दी जाए। मित्रों, यह निवेदन तो था, परंतु यह अत्यधिक घृष्ट। परंतु अदोनिय्याह जानता था कि सुलेमान अपनी माता की किसी बात का इनकार नहीं करेगा। यही कारण था कि वह सीधा सुलेमान के पास जाने की अपेक्षा बतशेबा के पास गया था। हम आगे पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 22 और 23 पद में, राजा सुलेमान ने अपनी माता को उत्तर दिया, तू अदोनिय्याह के लिए शूनेमिन अभिषेक ही को क्यों मांगती है? उसके लिए राज्य भी मांग, क्योंकि वह तो मेरा बड़ा भाई है, और उसी के लिए क्या एब्यातर याजक और सूर्याह के पुत्र युवाब के लिए भी मांग। और राजा सुलेमान ने यहोवा की शपथ खाकर कहा, यदि अदोनिय्याह ने यह बात अपने प्राण पर खेलकर न कही हो तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही क्या वरन उससे भी अधिक करे। मित्रों, ध्यान दीजिए कि अदोनिय्याह जो करना चाह रहा था वह सिंहासन के निकट आने की उसकी युक्ति थी। वह एक एक अनर्थकारी कार्य कर रहा था, परंतु अत्यधिक चतुराई के साथ में। अदोनिय्याह सुलेमान का बड़ा भाई था और अदोनिय्याह द्वारा सिंहासन का अनाधिकार ग्रहण करना या ग्रहण के विषय वह जानता था। दाऊद ने इस समय तक उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी, यद्यपि बतशेबा अपने भोलेपन में सोच रही थी कि अदोनिय्याह द्वारा अभिषेक का हाथ मांगना अतार्किक नहीं था, परंतु सुलेमान की कुशाग्र बुद्धि षड्यंत्र के पार देखने में सफल हुई। हम पढ़ते हैं पहला राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 24 और 25 पद में, लिखा हुआ है, अब यहोवा जिसने मुझे स्थिर किया और मेरे पिता दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान किया है और अपने वचन के अनुसार मेरा घर बसाया है, उसके जीवन की शपथ आज ही अदुनिया मार डाला जाएगा। और राजा सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को भेज दिया और उसने जाकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। मेरे मित्रों, निस्संदेह अदुनिया की हत्या पार्श्विक थी, परंतु उसकी मृत्यु ने सिंहासन के एक प्रत्याशी का अंत किया। सुलेमान को सिंहासन पर बैठाए रखने के लिए उसे मृत्यु देना अति आवश्यक था, क्योंकि जब तक वह जीवित रहता वह सिंहासन पाने की चेष्टा में कोई न कोई युक्ति चलाता रहता या षड्यंत्र रचता। अब अदुनिया का अंत करने के पश्चात सुलेमान ने उसके सहयोगियों में से पदाधिकारियों को हटा देना ही आवश्यक समझा। हम पढ़ते हैं पहला राजाओं की पुस्तक 2:26-27 पद में, और एब्यातर याजक से राजा ने कहा, अनातोत में अपनी भूमि को जा, क्योंकि तू भी प्राण दंड के योग्य है। आज के दिन तो मैं तुझे न मार डालूंगा, क्योंकि तू मेरे पिता दाऊद के सामने प्रभु यहोवा का संदूक उठाया करता था, और उन सब दुखों में जो मेरे पिता पर पड़े थे तू भी दुखी था। और सुलेमान ने एब्यातर को यहोवा के याजक होने के पद से उतार दिया, इसलिए कि जो वचन यहोवा ने एली के वंश के विषय में शिलो में कहा था वह पूरा हो जाए। मेरे मित्रों, हारून का वंशज एब्यातर को भी याजक पद से हटाकर अपमान के साथ घर भेज दिया गया, क्योंकि उसने अदुनिया के विद्रोह में साथ दिया था। उसे जीवन दान दिए जाने का एकमात्र कारण यह था कि उसने अबशालोम के विद्रोह के समय दाऊद के साथ निष्ठा निभाई थी। इस प्रकार एली का वंश समाप्त हुआ। तब हम देखते हैं पहला राजाओं की पुस्तक 2:28-30 पद में, इसका समाचार योआब तक पहुंचा। योआब अबशालोम के पीछे तो नहीं हो लिया था, परंतु अदुनिया के पीछे हो लिया था। तब योआब यहोवा के तंबू को भाग गया और वेदी के सींगों को पकड़ लिया। जब राजा सुलेमान को यह समाचार मिला कि योआब यहोवा के तंबू को भाग गया है और वह वेदी के पास है, तब सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को यह कहकर भेज दिया कि तू जाकर उसे मार डाल। तब बनायाह ने यहोवा के तंबू के पास जाकर उसे कहा, राजा की यह आज्ञा है कि निकल आ। उसने कहा, नहीं, मैं यही मर जाऊंगा। तब बनायाह ने लौटकर यह संदेश राजा को दिया कि योआब ने मुझे यह उत्तर दिया है। मेरे मित्रों, जब योआब ने सुना कि एब्यातर और अदुनिया के साथ क्या हुआ है, तब वह भी यहोवा के भवन में भाग गया और वेदी के सिंह पकड़ लिए। तब सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को नियुक्त किया कि योआब को घात करे। उसने योआब को पुकारा कि बाहर आ जाए, परंतु उसने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं यही मर जाऊंगा। हम आगे पढ़ते हैं पहला राजाओं की पुस्तक 2:31-32 पद में, राजा ने उसे कहा, उसके कहने के अनुसार उसको मार डाल और उसे मिट्टी दे। ऐसा करके निर्दोषों का जो खून योआब ने किया है उसका दोष तो मुझ पर से और मेरे पिता के घराने पर से दूर करेगा, और यहोवा उसके सिर वह खून लौटा देगा, क्योंकि उसने मेरे पिता दाऊद के बिना जाने अपने से अधिक धर्मी और भले दो पुरुषों पर, अर्थात इसराइल के प्रधान सेनापति नेर के पुत्र अबनेर और यहूदा के प्रधान सेनापति एतेर के पुत्र अमासा पर टूटकर उनको तलवार से मार डाला था। योआब एक खूनी मनुष्य था। पहले राजाओं की पुस्तक 2:33-34 पद में आगे लिखा है, यूं योआब के सिर पर और उसकी संतान के सिर पर खून सदा तक रहेगा, परंतु दाऊद और उसके वंश और उसके घराने और उसके राज्य पर यहोवा की ओर से शांति सदैव तक रहेगी। तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने जाकर योआब को मार डाला और उसको जंगल में उसी के घर में मिट्टी दी गई। उसको घात करने का कारण था सुलेमान से विद्रोह। शिमी एक और राजद्रोही था, क्योंकि दाऊद ने उसे हानि पहुंचाने का वचन दिया था। अब सुलेमान उस पर रोक लगा देता है। पहले राजाओं की पुस्तक 2:36 पद में लिखा हुआ है, और राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वहीं रहना और नगर के बाहर कहीं न जाना। सुलेमान शिमी को वहीं रखना चाहता था जहां वह उसकी आंखों के सामने रहे। वह जहां भी जाए या गया उसने विद्रोह के बीज बोए, और सुलेमान उसकी एक एक गतिविधि का ध्यान रखना चाहता था। हम पहला राजा 2:37-38 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तू निश्चय जान रहा कि जिस दिन तू निकल कर किद्रोन नाले के पार उतरे उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा और तेरा लहू तेरे ही सिर पर पड़ेगा। शिमी ने राजा से कहा, बात अच्छी है, जैसा मेरे प्रभु राजा ने कहा है वैसा ही तेरा दास करेगा। तब शिमी बहुत दिन यरूशलेम में रहा। सुलेमान ने शिमी को आज्ञा दी थी कि यरूशलेम में ही मकान बनाकर वहां रहे, उसे अपने ही गोत्र में जाकर रहना मना था। शिमी ने सुलेमान की शर्तों को मानने की प्रतिज्ञा की। तब हम आगे देखते हैं, पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 39 और 40 पद में लिखा है, परंतु 3 वर्ष के व्यतीत होने पर शिमी के 2 दास गत नगर के राजा माका के पुत्र आकीश के पास भाग गए और शिमी को यह समाचार मिला कि तेरे दास गत में है। तब शिमी उठकर अपने गधे पर काठी कसकर अपने दास को ढूंढने के लिए गत को आकीश के पास गया और अपने दासों को गत से ले आया। शिमी नगर की सीमा से बाहर जाकर रहने लगा और यह सुलेमान की आज्ञा की सीधी अवज्ञा थी। जब शिमी के कर्मों की जानकारी सुलेमान को मिला तो उसने उसे तुरंत बुलवाया। हम पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 43 से 46 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर तूने यहोवा की शपथ और मेरी दृढ़ आज्ञा क्यों नहीं मानी? और राजा ने शिमी से कहा कि तू आप ही अपने मन में उस सब दुष्टता को जानता है जो तूने मेरे पिता दाऊद से की थी, इसलिए यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा, परंतु राजा सुलेमान धन्य रहेगा और दाऊद का राज्य यहोवा के सामने सदैव दृढ़ रहेगा। तब राजा ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को आज्ञा दी और उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वह भी मर गया और सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया। मेरे मित्रों, शिमी की मृत्यु के साथ सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के दिए कर्तव्य भार को पूरा किया। सुलेमान ने सिंहासन के प्रतियोगियों में से अधिकांश को समाप्त कर अपने राज्य को शांति से पूर्ण किया। हम यहाँ पर अध्याय 2 को समाप्त करते हैं और अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे और अध्याय 3 में देखेंगे बुद्धि प्राप्ति के लिए सुलेमान की प्रार्थना और परमेश्वर का उत्तर। इस अध्याय में यहोवा ने रात में स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान इसराइल का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति मांगता है कि भले और बुरे को परख सके। उसकी स्वार्थ रहित याचना परमेश्वर को ऐसा प्रसन्न करती है कि उसने उसकी याचना से बहुत अधिक उसे दिया। मेरे मित्रों, बुद्धि के साथ साथ वह उसे धन और सम्मान प्रदान करता है। 2 माताएं एक बच्चे के लिए लड़ रही थी, उनका न्याय प्रकट करता है कि परमेश्वर ने वास्तव में उसे बुद्धि और समझ से भरा मन दिया था। मेरे मित्रों, अब हम पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया और उसको दाऊद पुत्र में लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहर पनाह न बनवा चुका तब तक उसको वहीं रखा, क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। राजा बनने के पश्चात सुलेमान ने पहला काम जो किया हुआ था कि उसने मिस्र के राजा फिरौन की पुत्री से विवाह किया। उसके विवाह के कारण मिस्र के साथ उसकी मित्रता हुई। अन्य जाति स्त्रियों के साथ सुलेमान का विवाह उसकी बड़ी भूल थी और अंततः उसका सर्वनाश भी हुआ। मित्रों, स्मरण रखें कि सुलेमान का पालन पोषण महिला विभाग में हुआ था। वह अपने पिता दाऊद के समान जीवन का अनुभव नहीं रखता था। मित्रों, मैं नहीं मानता कि सुलेमान में कभी दाऊद के तुल्य परमेश्वर के लिए आत्मिक क्षमता थी, न ही उसने वैसी ईश्वरीय लालसा रखी। सुलेमान ने अपनी कमियों को परमेश्वर के समक्ष स्वीकार किया और इसे करने में चूक न की। फिरौन की पुत्री से विवाह करने के पश्चात उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। काश वह पहले बुद्धि मांग लेता। मेरे मित्रों, दाऊद के राज्य के बाद शांति का समय आया और प्रजा ऊंचे स्थानों में बलि चढ़ाने लगी और यह वास्तव में अन्य जाति अभ्यास था। यह मूर्ति पूजा स्वरूप ही था। देखें सुलेमान द्वारा बलि और बुद्धि की याचना। पहले राजाओं की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने को गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की विधि पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। मित्रों, ध्यान दीजिए, सुलेमान अन्य जाति वेदियों पर बलि चढ़ाने में असंकोची न था, जो उसका पिता कभी न करता। यद्यपि सुलेमान परमेश्वर से प्रेम करता था, वह दाऊद के सदृश नहीं था। सुलेमान दाऊद के आदेशों का पालन कर रहा था। परंतु उसकी त्रुटि जो हमने देखी है मनुष्य को दूसरे दर्जे का बना देती है। हम पहला राजा 3 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा वह मांग। मित्रों, एक रात परमेश्वर सुलेमान पर प्रकट हुआ। मैं फिर कहता हूं कि आज परमेश्वर मनुष्य को दर्शन नहीं देता है। यदि आप स्वप्न देखते हैं तो यह न कहें कि परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है। बस याद करें कि आपने रात के भोजन में क्या खाया था और आपको समझ में आ जाएगा कि आपने वह स्वप्न क्यों देखा है। मित्रों, आज परमेश्वर हमसे अपने वचन द्वारा बातें करता है। सुलेमान के पास परमेश्वर का वचन नहीं था, अतः परमेश्वर उसको स्वप्न में आया और कहा, मांग तुझे क्या चाहिए और मैं दूंगा। सुलेमान क्या मांगेगा? उसके पास कुछ भी मांगने के लिए या मांग लेने का चुनाव था। उसके द्वारा सही निर्णय लेना ही एक बात का प्रमाण था कि उसमें बुद्धि पहले ही से थी। तब परमेश्वर ने उससे और भी बुद्धि दी। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि जो वह चाहे मांग ले, तब परमेश्वर जानता था कि उसमें अनेक दुर्बलताएं हैं और वह पूर्ण रूप से अक्षम है। परंतु मेरे मित्रों, पूर्ण रूपेण सक्षम कौन है? मसीही जीवन जीने योग्य कौन है? हम ऐसे एक भी नहीं। और सच तो यह है कि हम मसीही जीवन नहीं जी सकते और परमेश्वर कहता भी नहीं है कि हम ऐसा करें। वह तो हमारे द्वारा अपना जीवन जीना चाहता है। अब वह सुलेमान के द्वारा कुछ करना चाहता है। वह धन और शक्ति मांग सकता था, परंतु अपनी दुर्बलताओं को मानते हुए उसने बुद्धि मांगी थी। मेरे मित्रों, यह सुलेमान का बहुत अच्छा निर्णय था। आज मेरे और आपके लिए भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि यदि आज मुझसे और आपसे परमेश्वर कहे कि मांग तुझे क्या चाहिए मैं दूंगा, आप और मैं उससे क्या मांगेंगे? मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको निर्णय लेना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आज हम जो कुछ भी प्रतिदिन मांगते रहते हैं एक सही विचार के साथ मांगे, ताकि उसके उन आशीषों को हम प्राप्त करने पाए। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने बहुत ही विशेष और आत्मिक बातों को अपने जीवन में सीखा है। प्रभु इन सारी बातों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्युंजय जय का सृजनहा, पालनहा, तारणहा। का दुख हरने